नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों की कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसके तहत जीवन सुगमता, कारोबार सुगमता और समावेशी समृद्धि बढ़ाने के उपायों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री को शासन में सरलता, आर्थिक वृद्धि को मजबूती देने और इन उपायों से नागरिकों के लिए सीधा लाभ सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के बाद ये उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। संबोधन में प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों और करों का बोझ कम करने के रूप में दिवाली उपहार का वायदा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का बैठक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का भारत लगातार आह्वान करता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने इस दिशा में सभी प्रयासों का समर्थन किया है। श्री मोदी ने आने वाले दिनों में भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत होने की आशा व्यक्त की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में मदद के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच आमने सामने की बातचीत का प्रबंध करेंगे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्री ट्रंप ने कहा कि कल रात व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं की मेजबानी के बाद उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच बैठक की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थान का निर्धारण बाद में किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि पुतिन ज़ेलेंस्की वार्ता के बाद त्रिपक्षीय बैठक में भी वे शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो तथा विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस सिलसिले में रूस और यूक्रेन के साथ समन्वय कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता हुई। इस दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों में एक कठिन दौर देखने के बाद अब आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और आपसी हित के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतभेदों को विवाद या प्रतिस्पर्धा में नहीं बदलना चाहिए।
Having seen a difficult period in our relationship, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict.
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर बाधित रही। लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही एक बार स्थगित होने के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मेरठ करनाल मार्ग पर भूनी टोल प्लाजा पर सेना के एक जवान के साथ दुर्व्यवहार की घटना पर टोल संग्रह एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने टोल संग्रह कंपनी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक वक्तव्य में इस घटना को अनुबंध शर्तों का उल्लंघन बताया। प्राधिकरण ने इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वो राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश की बॉडी बिल्डर हिलांग याजिक को 15वें दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रतियोगिता भूटान के थिम्फू में आयोजित हुई। श्री किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं और खेल मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने याजिक की उपलब्धि की सराहना की और आगामी एशियन चैंपियनशिप सहित भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। विश्व की दूसरी रैंकिंग के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीत लिया है। कल ओहियो में मौजूदा चैंपियन और विश्व की पहली वरीयता के खिलाड़ी यानिक सिनर को 0-5 से पिछड़ने के बाद अस्वस्थता के कारण खेल से हट जाने का फैसला लिया। खेल केवल 23 मिनट तक ही चला। कनाडा के विनिपेग में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप आज से शुरू होगी। इसमें भारत का 14 सदस्यीय दल इसमें भारत का 24 सदस्यीय दल भाग लेगा। टूर्नामेंट 24 अगस्त को समाप्त होगा। इसमें 63 देशों के 570 तीरंदाज भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।